नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय गीत से देश के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा मिली। केंद्र सरकार उड़ाने रद्द होने की स्थिति की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रदेश में खनिजों की खोज में एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों के इस्तेमाल के लिए दो महत्वपूर्ण समझौते। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से मामूली राहत। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी और स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक वंदे मातरम का जय घोष किया।
हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था।
नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमानन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री नायडू ने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे रही है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इंडिगो एयरलाइन में क्रू संकट का असर प्रदेश के एयरपोर्ट्स पर भी पड़ा है। पिछले 6 दिन में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हवाई अड्डों से कई फ्लाइट्स रद्द चल रही हैं। फ्लाइट संचालन की स्थिति में हालांकि आज आंशिक सुधार हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज रद्द फ्लाइट्स की संख्या में कमी आई है और 7 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। हालांकि अभी भी फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों के लिए परेशानी बनी हुई है। गौरतलब है कि इंडिगो एयरलाइन की तरफ से क्रू की कमी का हवाला देते हुए फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं। शुक्रवार को सबसे ज्यादा 23 फ्लाइट्स का डिपार्चर रद्द हुआ था। वहीं रविवार को भी 20 फ्लाइट्स रद्द रही थीं। जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की रोजाना 46 फ्लाइट्स संचालित होती हैं। इस तरह 15% फ्लाइट्स का संचालन निरस्त रहा है। हवाई सेवाओं के रद्द होने से उत्पन्न अतिरिक्त यात्री भार के मद्देनजर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि कल हावड़ा से जोधपुर के लिए वाया जयपुर विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन यशवंतपुर से अजमेर के लिए 10 दिसंबर को संचालित होगी, जो अगले दिन जयपुर होते हुए अजमेर पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी नोएडा द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित रोड सेफ्टी ऑडिट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 15 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है।
घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है हमारे रोड्स पे, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या हमको कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये घटनाएं ना हो आगे आने वाले समय में। एग्जिस्टिंग रोड्स पे भी क्या हम लोग सेफ्टी नॉर्म्स और अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो डिवाइडर पे हमको बैरियर लगाने की बात हो या ट्रैफिक लाइट लगाने की बात हो, स्पीड ब्रेकर लगाने की बात हो, ऐसी क्या नॉर्म्स है जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। अभी नोएडा से ऑफिशियल्स आए हैं और अभी 15 दिन की ट्रेनिंग हमारी पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को मिलने वाली है।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के ठीकरिया में राजीविका विकास क्लस्टर लेवल फेडरेशन का अवलोकन किया। उन्होंने राजीविका को ग्रामीण उद्यमिता का एक सशक्त मॉडल बताया जिसके माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने ब्लू पॉटरी और बगरू प्रिंट से जुड़ी लखपति दीदियों से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। मुख्य सचिव ने कहा कि महिलाओं की इन प्रेरणादायक कहानियों को प्रधानमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने बायर सेलर मीट पहल को व्यापक स्तर पर बढ़ाने का आश्वासन दिया जिससे महिलाओं के उत्पादों को सीधे बड़ी कंपनियों से जोड़ा जा सकेगा। संभागीय आयुक्त पूनम ने राजस्थली मार्ट की तर्ज पर स्थानीय मार्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस के सिलसिले में राज्य के खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए दो महत्वपूर्ण सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खान, भू विज्ञान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों के अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए RSMET और IIT हैदराबाद के बीच समझौता हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में खदान डंप्स और टेलिंग्स के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए IIT, ISM धनबाद और RSMET के बीच एक अन्य समझौता किया गया है। जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में आज ऑल विमेन दीक्षांत परेड संपन्न हुई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने परेड की सलामी ली। दीक्षांत परेड में राजस्थान पुलिस की 241 और दूरसंचार विभाग की 76 महिला कांस्टेबल्स ने भाग लिया। DGP शर्मा ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। उन्होंने नई न्याय संहिताओं को 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस 1,500 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर इनके प्रभावी क्रियान्वयन में जुटी है। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के सिलसिले में आज झुंझुनू के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल पुनिया के नेतृत्व में कार्मिकों और पूर्व सैनिकों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के समापन पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल पुनिया ने शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों की सहायता के लिए आमजन से सहयोग की अपील की।
आज हमने जो है एक जागरूकता रैली निकाली है कि जो है जनसंख्या 8 करोड़ है। अब हर एक व्यक्ति भी अगर 1 रुपया देता है तो 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब सरकार के पास अगर 8 करोड़ रुपए हैं तो फिर वो लाभार्थियों को उसी हिसाब से जो है आर्थिक लाभ दे सकते हैं। आम नागरिकों से अपील है, QR कोड जो है स्कैनर हम हर जगह पे इसको लगाएंगे, पेपर में निकालेंगे, अधिक से अधिक इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करें जिससे कि जो है शहीद परिवार हैं या दूसरे तरह के जो सैनिक हैं जिनको आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है उनको जो है लाभ दिया जा सके।
और अब मौसम। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से मामूली राहत मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हो रहा है। सिरोही जिले में स्थित प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं देश भर से आए सैलानी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इसके अलावा करौली में सर्दी की रंगत दिखने लगी है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में देर रात और सुबह के समय गलन महसूस होने लगी है।
करौली जिले में सर्दी का मिजाज लगातार बदल रहा है और रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। देर रात और सुबह के समय ओस बढ़ने से गलन में और अधिक बढ़ोतरी हुई है। सुबह शाम बाजारों में आवाजाही कम हो गई है और लोग केवल जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि यह सर्दी किसानों के लिए राहत लेकर आई है। गेहूं और सरसों की फसल में नई रंगत दिखाई देने लगी है। इधर जिला मुख्यालय के गुलाबबाग क्षेत्र में कंबल और गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। सर्द रातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय के अलावा हिंडौन, सपोटरा, टोडा भीम सहित कई स्थानों पर रैन बसेरों की अतिरिक्त व्यवस्था की है ताकि जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
चित्तौड़गढ़ जिले को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर मिला है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 हैंडबॉल प्रतियोगिता 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 7 बोर्डों की टीम भाग लेंगी। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन तथा महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन के मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार हाथ से बने उत्पादों की जमकर बिक्री हो रही है। हाट में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने इंस्टीट्यूशंस से छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने का आग्रह किया है। एक बयान में UGC ने कहा कि ये कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है ताकि जेंडर सेंसिटाइजेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय गीत से देश के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा मिली। केंद्र सरकार उड़ानें रद्द होने की स्थिति की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रदेश में खनिजों की खोज में AI और मशीन लर्निंग तकनीकों के इस्तेमाल के लिए 2 महत्वपूर्ण समझौते। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से मामूली राहत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।